शांति ओम शांति ओम शांति। प्यारे बाबा की बहुत मीठी मीठी मुरली हम सब ने अभी सुनी। बाबा ने कहा प्राणेश्वर बाबा आए हैं क्या करने, प्राण दान देने। और बाबा ने कहा प्राण दान देने का मतलब है तमो प्रधान से स्तो प्रधान बनना। बाबा ने आज मुरली में ये भी कहा कि बाबा अमर बाबा पार्वतियों को अमर कथा सुनाने आए हैं। भक्ति मार्ग में लोग अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं और वहाँ यादगार है, कहते हैं यहाँ शिव ने पार्वती को कथा सुनाई थी। लेकिन उनसे पूछो कि वो कथा कौन सी थी तो कथा बताते नहीं है, बस ये कहते हैं कि कथा सुनाई थी और पार्वती को नींद आ गई, कबूतर ने कथा सुन ली। लेकिन वो कथा कौन सी थी वो तो बताते नहीं है। अब बाबा ने हम बच्चों को कौन सी कथा थी वो स्पष्ट किया है। आपको मालूम पड़ गया कथा कौन सी थी, कौन सी कथा थी? बाबा जो रोज हमको आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं ना, वही कथा है। इसलिए बाबा ये भी कहते हैं कि मैं आप बच्चों का दादा हूँ। और जैसे लौकिक दुनिया में दादा अपने पोत्रों को कहानी सुनाता है, अभी तो कम हो गया लेकिन पहले तो हर एक पोत्रा दादा से कहानियाँ सुनता था। अभी तो टीवी रेडियो अखबार बहुत कुछ हो गया और बहुत जगह तो अभी भी दादा लोग पोत्रों को कहानियाँ सुनाते हैं। कहते हैं वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें अपने दादा दादी देखने को मिलते हैं। तो हम बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, हमको रोज हमारा दादा कहानी सुनाता है। कौन सी कहानी सुनाता है? ये जो मुरली है ना, ये कहानी ही तो है। कौन सी कहानी है? ये अमरनाथ वाली कथा भी है, तीजरी वाली कथा भी है, सत्यनारायण वाली कथा भी है। देखो इस कथा की शुरुआत कैसे होती है। बाबा हमारे दादा हैं, हम पोत्रे हैं, हम कहते हैं बाबा कहानी सुनाओ, तो बाबा कैसे शुरू करते हैं? बाबा कहती हैं लोंग लोंग एगो, माना बहुत पुरानी बात है, 5,000 साल पुरानी बात है। इस भारत देश में एक बहुत गुणवान शक्तिशाली 16 कला संपूर्ण राजा और एक बहुत गुणवान मर्यादा पूर्ण एक बहुत ही अच्छी महारानी श्री लक्ष्मी, इन दोनों का राज्य था। ऐसे कहानी की शुरुआत होती है ना। फिर हम बच्चे पूछते हैं बाबा फिर क्या हुआ, तो बाबा कहती हैं बच्चे इन दोनों के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, बहुत धन धन्य था, अकाल मृत्यु नहीं थी, सबको 21 पीढ़ी सुख था, माना पूरी आयु भोगने का सुख था, निरोगी काया थी। फिर हम पूछते हैं बाबा फिर क्या हुआ, तो बाबा कहती हैं इन्होंने 1250 साल तक राज्य किया, प्रजा को अपने पुत्रों की तरह से पालना दी, इनका राज्य अटल अखंड था, इनके राज्य को कोई छीन नहीं सकता था, कोई दंगा नहीं था, और 100% सुख शांति और पवित्रता थी। सब के महल बड़े बड़े थे, सोने जवाहरात इन सब से सजे हुए थे। और बाबा कहते हैं बच्चे प्रकृति भी स्तो प्रधान थी, इसलिए दुख क्या है उसका नामो निशान भी नहीं था। घी दूध की नदियां बहती थी और आपस में प्यार इतना था, देवताओं में तो प्यार था ही लेकिन जानवरों में भी बहुत प्यार था। फिर हम बाबा को पूछते हैं फिर बाबा वो सुख कहाँ गया, तो बाबा क्या बताते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे धीरे धीरे कलाएं कम हुई और सूर्य वंशियों के बाद चंद्र वंशियों के हाथों में राज्य आया। तो हम पूछते हैं बाबा कोई युद्ध हुआ था क्या, चंद्रवंशियों को राज्य कैसे मिला, तो बाबा कहते हैं नहीं, शुरू के 2500 साल कोई युद्ध नहीं होता, सूर्य वंशियों ने खुशी खुशी से अपनी राजाई चंद्रवंशियों को हैंडओवर कर दी और चंद्रवंशियों का राज्य आया। उसमें भी 14 कला संपन्न थे, श्री सीता श्री राम का राज्य था और उस राज्य का गायन आज भी करते हैं। देखो आज भी बाबा ने मुरली में कहा ना, बापू गांधी कहते थे राम राज्य चाहिए, तो उस त्रेता के राम राज्य का गायन तो आज भी है। भारत सरकार आज भी क्या चाहती है कि भारत में राम राज्य हो जाए। तो वहां राम राज्य में सब राजा प्रजा सुखी थे, मर्यादा पूर्ण थे, इसलिए गायन है राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है। माना जो साहूकार था उसमें भी राम जैसे गुण थे, प्रजा थी उसमें भी राम जैसे गुण थे, और जो राजा था वो तो राम था ही। फिर हम पूछते हैं बाबा फिर वो राम राज्य कहाँ चला गया, फिर बाबा ने क्या सुनाया। बाबा कहते हैं जब 2500 साल पूरे हो गए तो एक बहुत बड़ा शैतान पैदा हो गया, देवताओं की कलाएं कम हो गई, और जैसे जैसे कलाएं कम हो गई एक शैतान का आगमन हुआ। कौन था वो शैतान, रावण। तो बाबा कहते हैं रावण आया और चंद्रवंशियों के जो दो ताज थे, एक पवित्रता का ताज था और एक सोने हीरे मोतियों का ताज था, तो रावण ने चुपके से आकर के पीछे से वो लाइट वाला ताज छीन लिया। जब राजा रानी के सिर पर से लाइट का ताज छीन लिया तो केवल एक ताज बच गया, कौन सा, हीरे मोतियों वाला जवाहरातों वाला। अब लाइट का ताज छिन गया, कलाएं 8 रह गई, पवित्रता खत्म हो गई, तो वो महाराजा महारानी के बजाय केवल राजा रानी रह गए, देवी महाराजा महारानी के बजाय साधारण राजा रानी रह गए। तो राज्य तो उनका भी चला लेकिन उनके जीवन में अब देवताओं जैसा सुख नहीं था, देवताओं जैसी शांति और पवित्रता नहीं थी। और जब लाइट का ताज चला गया तो क्या आ गया जीवन में, दुख आ गया, शांति आ गई, अपवित्रता आ गई। और अपवित्रता के कितने रूप हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये सब बुराइयां आ गई। और जब ये बुराइयां आ गई तो जैसे देवताओं का अटल अखंड राज्य था वैसा अटल अखंड राज्य नहीं रहा, अनेक टुकड़े हो गए इस भारत देश के, अनेक राजा हो गए। और फिर क्या हुआ, बाबा ने कहा वो राजा लोग भी आपस में धन के लिए मान के लिए जमीन के लिए लड़ने लगे, तो 3000 साल तक कोई युद्ध नहीं हुआ। और 3000 साल के बाद छोटा मोटा युद्ध प्रारंभ हो गया। फिर बाबा ने क्या सुनाया कि बच्चे द्वापर युग मेरे आने का समय नहीं था क्योंकि वो तो भक्ति काल था, और भक्ति काल में आप बच्चों ने ऐवे बिचारी भक्ति की, मेरे मंदिर बनाए। राजा विक्रमादित्य ने बहुत सुंदर मंदिर बनाया, सोमनाथ मंदिर। और बाबा ने ये भी बताया कि उस मंदिर में इतने हीरे जवाहरात थे जितने राजा ने अपने महल में भी नहीं लगाए थे। द्वापर युग के राजाओं की शिव में बहुत निष्ठा थी और इसलिए उनकी नगरी शिव नगरी थी। राजा भी शिव भक्त, प्रजा भी शिव भक्त। जैसे शिव की उन पर अपरम अपार कृपा थी, इसलिए द्वापर युग के राजाओं के पास भी सुख था, धन धान्य था और द्वापर युग के राजा भी अच्छे चरित्रवान प्रजापालक थे। द्वापर युग में इतना दुख नहीं था। द्वापर युग में भी भारत एक शक्तिशाली राज्य था, लेकिन अब भारत से बाहर छोटे छोटे राज्य स्थापित होने लगे थे। फिर हमने पूछा, बाबा फिर क्या हुआ? तो बाबा कहती हैं, मैंने देखा कि मेरे बच्चे धीरे धीरे कलाएं कम होने के कारण दुख और अशांति की पकड़ में आते जा रहे हैं। तो बाबा ने क्या किया? बाबा तो कहती हैं जो हुआ ड्रामा अनुसार हुआ। तो ड्रामा में फिर एक नया सीन आया। क्या? एक बहुत शक्तिशाली धर्म आत्मा धर्म पिता के रूप में इस धरती पर अवतरित हुई। ये जितने भी धर्म पिता हैं ना, ये पहले जन्म में तो अवतार लेते हैं, गर्भ से जन्म नहीं लेते, एक बने बनाए शरीर में प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले अवतार रूप में कौन आया? इब्राहिम आया और उसने मर्यादा की शिक्षा लोगों को दी, एक का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे भक्ति शिव के बाद जब व्यभिचारी होने लगी तो इब्राहिम ने कहा एक को पूजो, एक को याद करो। तो वो इब्राहिम भी बाबा का बहुत लाडला बच्चा था और उसने लोगों का एक में विश्वास बिठाया। इस प्रकार से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। अब जब इब्राहिम चला गया तो उसकी शिक्षाएं भी थोड़ी कम पड़ने लगी और जनसंख्या तो बहुत तीव्र गति से बढ़ी। अब इस बढ़ी हुई जनसंख्या को फिर कोई ना कोई अवतार की जरूरत पड़ी। तो ड्रामा अनुसार एक दूसरा अवतार धरती पर आया। वो कौन था? वो थी बुद्ध की आत्मा और उसने सब आत्माओं को अहिंसा का, करुणा का उपदेश दिया, क्योंकि उस समय हिंसा, नरबलि, पशु बलि ये सब बहुत बढ़ गई थी। तो बुद्ध ने कहा एक दो पर रहम करो, इसलिए उसको करुणा अवतार कहा गया। अब महात्मा बुद्ध की आत्मा ने भी बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए। वो भी शिव बाबा का बहुत प्यारा बच्चा था, लेकिन उसकी शिक्षाओं का समय भी पूरा हुआ, वो चला गया और उसके बाद उसकी शिक्षाओं का प्रभाव कम हो गया। बाबा ने बताया कि हरेक धर्म की चार अवस्थाएं होती हैं। जब धर्म पिता होता है तो सतो प्रधान अवस्था, उसके बाद सतो, फिर रजो, फिर तमो होती है। तो इन धर्मों की भी कर्म अनुसार ये अवस्थाएं होती गई और फिर नए नए धर्म आते गए। महात्मा बुद्ध की आत्मा के जाने के बाद ड्रामा अनुसार एक और अवतार आया, उसका नाम क्या था? क्राइस्ट। तो बाबा ने कहा वो भी मेरा प्यारा बच्चा था और उसने लोगों को कौन सा संदेश दिया? प्रेम का संदेश दिया। उसने कहा अपने पड़ोसी से प्रेम करो तो भगवान तुमको प्रेम करेगा, तुम मनुष्यों से प्रेम करोगे तो भगवान तुमको प्रेम करेगा। उसने कहा भगवान एक ज्योति है, लाइट है, वो बहुत दयालु है। और अपने लिए उसने कहा मैं भगवान का बेटा हूं। तो उस आत्मा ने भी लोगों को बहुत अच्छे अच्छे उपदेश दिए, लेकिन समय पूरा होने पर उसका भी पुनर्जन्म हो गया। उसके बाद एक आत्मा और आई, वो कौन थी, कौन आया उसके बाद? उसके बाद मोहम्मद की आत्मा आई और उसने पुनः मुस्लिम धर्म की स्थापना की। वो भी बाबा का बहुत प्यारा बच्चा था। मोहम्मद के बाद कौन आया? उसके बाद शंकराचार्य की आत्मा आई और उसने लोगों को विरक्ति का संदेश दिया, नासक्ति का संदेश दिया, एक नया संन्यास धर्म उसने चलाया और लोगों ने घर बार छोड़ करके जंगलों में जा करके साधना करना शंकराचार्य से सीखा। फिर हमने पूछा, बाबा फिर क्या हुआ? तो बाबा कहती हैं, देखो इतनी शक्तिशाली आत्माएं धरती पर आई, उपदेश दिया, लेकिन ड्रामा अनुसार आत्माओं की गिरती कला तो होनी ही थी। इसलिए बावजूद धर्म स्थापकों के आत्माओं की गिरती कला होती गई और द्वापर युग के बाद हमारे सामने कौन सा दृश्य आया? कलयुग का दृश्य आया। कलयुग में कलाएं और कम हो गई, आत्माएं काली हो गई, तमो के बजाय तमो प्रधानता की ओर चली गई। अब कलयुग में आत्माओं की संख्या ज्यादा और कोई भी ऐसी शक्तिशाली आत्मा बची ही नहीं जो सारी आत्माओं को एक सूत्र में बांधे, सबको एक संदेश दे। कलयुग में एक ही धर्म पिता अवतरित हुए, वो कौन थे? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी ने भी एक का पाठ पढ़ाया। गुरु नानक देव जी ने कहा, भगवान एक है, निराकार है, उनका नाम सच्चा है, वो जन्म मरण रहित हैं, अकाल मूर्त हैं, सबके पूर्वज हैं, स्वयं प्रकाशित हैं। तो गुरु नानक देव जी ने जब एक का पाठ पढ़ाया तो एक की याद से आत्माओं को बहुत मनोबल मिला और उन्होंने अनेक अत्याचारों का सामना किया। फिर गुरु नानक जी की आत्मा ने भी पुनर्जन्म ले लिया। फिर क्या हुआ? कोई भी इतनी शक्तिशाली आत्मा उसके बाद अवतरित नहीं हुई जो सब आत्माओं को कोई शक्तिशाली पाठ पढ़ाए। और कलयुग अपने अंतिम चरण में आ गया। बाबा ने बच्चों को ये भी बताया कि इस पूरे ड्रामा में 3/4 सुख है और केवल 1/4 दुख है। सतयुग में भी सुख की चरम सीमा, त्रेता में भी बहुत सुख है, द्वापर में भी सुख है, जो थोड़ा दुख आता है वो कलयुग में आता है। और इस दुख की बलिहारी जो कलयुग के अंत में कौन अवतरित हुए? भगवान अवतरित हो गए, शिव बाबा आ गए ब्रह्मा बाबा के तन में। बाबा कहते हैं, जब मकान पुराना होता है ना तो कोई उसको सीमेंट लगाता है, कोई थोड़ा ईंट लगा देता है, लेकिन मकान को बिल्कुल नया कौन बनाएगा? जो मालिक होगा। तो इस दुनिया का मालिक कौन है? भगवान। जैसे कहते हैं पेड़ का एक बीज होता है, तो इस सृष्टि रूपी पेड़ का भी बीज है शिव बाबा। तो कलयुग के अंत में शिव बाबा कल्याणकारी, दुखकर्ता सुखकर्ता स्वयं अवतरित होते हैं और वो प्राणेश्वर बाबा हमें प्राण दान देते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में आत्मा बिल्कुल शक्तिहीन हो जाती है, बैटरी बिल्कुल खाली हो जाती है। और जब कोई शक्तिहीन हो जाता है तो देखो कैसे डगमगाता हुआ चलता है, उसकी जबान कैसे लड़खड़ाती है। इसी प्रकार से जब आत्मा भी शक्तिहीन हो जाती है तो उसके कर्म कैसे हो जाते हैं? उसके कर्म भी विकर्म बन जाते हैं, महापाप कर्म बन जाते हैं। शक्तिहीन होने के कारण आत्माएं आपस में लड़ती हैं, झगड़ती हैं, मारपीट करती हैं, हिंसा बढ़ जाती है, अपराध बढ़ जाते हैं। ज्ञान की रोशनी ना होने के कारण अंधेरे में ठोकर खाती हैं, ज्ञान इंजेक्शन ना होने के कारण आत्माएं बीमार हो जाती हैं, कोई रास्ता दिखाने वाला ना होने के कारण रास्ता भटक जाती हैं। इसलिए उन सब आत्माओं की पुकार सुन करके अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए, ज्ञान की संजीवनी बूटी देने के लिए, ज्ञान का इंजेक्शन लगाने के लिए स्वयं परम पिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में पुनः अवतरित होते हैं। फिर हमने पूछा, बाबा क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं, जब हम अवतरित होते हैं तो कलयुग बदल करके संगम युग बन जाता है, और इस संगम युग पर भक्ति की जितनी भी यादगारी हैं, उन सब का प्रैक्टिकल रूप चलता है। भक्ति में द्वापर युग में हम बच्चों ने भगवान के चरित्र गाए, गोप गोपियां थी, भगवान के साथ रास करते थे, अमरनाथ बाबा ने पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, भीलनी के बेर भगवान ने खाए थे, अहिल्या जो पत्थर बन गई थी उसको भगवान ने पुनः सुंदर नारी बना दिया था, कुब्जा का कुबड़ दूर किया था, ऐसी ऐसी कहानियां हमने द्वापर युग में कलयुग में बहुत गाई। तो संगम युग में वो सब कहानियां हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। संगम युग माना क्या? भगवान के चरित्रों का युग, भगवान के कर्तव्यों का युग, और भगवान के साथ भगवान के बच्चों के मिलन मनाने का युग। तो ये पूरा संगम युग हम भगवान से मिलन मनाते हैं, उनके चरित्रों को इन आंखों से देखते हैं, उनके साथ खाते हैं, रहते हैं, चलते हैं, और उनकी कितनी बातें सुनते हैं। भक्ति मार्ग में तो हमने सुना कि भगवान ने गीता सुनाई थी और उसके कुछ श्लोक पढ़ करके सोचते रहे कि शायद भगवान इतना ही बोलते होंगे, लेकिन संगम युग में हम आंखों से क्या देख रहे हैं? भगवान रोज बोलते हैं, और कितनी बातें बोलते हैं, कितनी बातें हम बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, सावधानियां देते हैं। तो ये संगम युग छोटा युग है, लेकिन सबसे महान युग है, और हम बच्चों को महान बनाने वाला युग है। बाबा ने फिर क्या बताया? बाबा कहते हैं, बच्चे मैं आप बच्चों के साथ केवल संगम युग में रहता हूँ, बाकी चार युग मैं साथ में नहीं रहता हूँ, केवल एक ही छोटे से युग में आप बच्चों के साथ रहता हूँ। इसलिए इस युग में एक मिनट के लिए भी, सेकंड के लिए भी मेरा साथ मत छोड़ो, मिलन मनाने का सुख भूलो मत, क्योंकि अब भगवान से जितना मिलन मनाएंगे, जितना उसके साथ रहेंगे, उसकी शक्ति हमें चारों युगों में मिलती रहेगी। भगवान तो अल्माइटी अथॉरिटी है ना, तो वो इस छोटे से युग में बैटरी को इतना चार्ज कर देते हैं जो वो चार युगों तक चलती है। आत्मा रूपी खिलौने में इतनी चाबी भर देते हैं जो वो चार युगों तक दौड़ता रहता है, और फिर जब चाबी बिल्कुल खत्म हो जाती है तो फिर आ जाते हैं। तो बाबा हम खिलौनों में चाबी भर रहा है, इसलिए हम बच्चों को संगम युग की एक एक चीज को इंजॉय करना है, एक एक पल का फायदा उठाना है। ये महाभारत काल भी है, रामायण काल भी है, और शक्तियों से असुरों के युद्ध का काल भी है। जितनी भी हमने भक्ति में बातें सुनी वो हमारे सामने हो रही हैं। इसलिए हम बच्चे बड़े भाग्यशाली हैं, त्रिकालदर्शी हैं, संगम युग में हमें तीनों काल दिखाई दे रहे हैं, बीता हुआ सतयुग भी दिख रहा है, वर्तमान में भगवान का कर्तव्य भी दिख रहा है, और इस कर्तव्य के फलस्वरूप आने वाला सतयुग का समय वो भी दिख रहा है। तो हम त्रिनेत्री भी हैं, त्रिकालदर्शी भी हैं, और भगवान के साथ एक उंगली लगा करके हम गोवर्धन पर्वत को भी उठा रहे हैं। गोवर्धन माना क्या? जिससे गवों की बढ़ोतरी हुई। तो सतयुग में घी दूध कहाँ से आएगा? बहुत गवे होंगी तभी तो आएगा ना। तो अब हम बच्चे क्या कर रहे हैं, ऐसी सेवा कर रहे हैं इस भारत देश की कि आने वाले समय में इतनी गवे होंगी जो घी दूध की नदियां बहेंगी। और हमने कौन सी उंगली लगा करके भगवान को सहयोग दिया है, सबसे छोटी उंगली। इस उंगली में तीन पोर्शन है, एक है तन का प्रतीक, एक है मन का प्रतीक और एक है धन का प्रतीक। तो भगवान हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे तन मन धन सहित एक जन्म मुझ पर वारी जाओ, फिर मैं 21 जन्म तुम पर वारी जाऊंगा। अभी मुझे अपना बच्चा बनाओ, 21 जन्म तुमको मैं वर्षा दूंगा। और अभी तुम मुझे अपना पोत्रा भी बनाओ। दादा तो हम सब ने बनाया, लेकिन भगवान को क्या बनाना है, पोत्रा भी बनाना है। पोत्रे में ज्यादा मोह होता है ना, तो बच्चा तो बनाना ही है लेकिन साथ में पोत्रा भी बनाना है। दादा बना के उससे कहानियां भी सुननी है और पोत्रा बना करके उसको कहानियां सुनानी भी है। रोज उसको अपनी कहानी भी सुनाते हो ना, बातें करते हैं तो क्या करते है? बाबा को अपने दिल की बातें सुनाते हैं, दिल की कहानियां सुनाते हैं। तो संगम युग में भगवान हमारा सर्व संबंधी है, उससे हम सर्व संबंधों का सुख पाते हैं और इसलिए हमारी बुद्धि किसी भी देहधारी संबंध में उलझती नहीं है। नहीं उलझती ना। ओम शांति।